سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما سمعنا صاحب آج نے یہ کہا سن تو نشان تین ٹائم سے پہلے خیریت کا نشان سن خلاصہ تفسیر شروع کر چکے تھے اور پیج نمبر 231 کے اوپر ہم یہاں پر دیکھیں یعنی عام مسلمانوں یعنی ازواج اور بنات اور عام مسلمانوں کی بیویوں کو یہ حکم دیا گیا کہ لمبی چادر میں مستور ہو کر نکلیں جس کو سر سے کچھ نیچے چہرے پر لٹکا لیا کریں جس کو اردو میں گھونگھٹ کرنا کہتے ہیں اچھا ریکارڈنگ سسٹم بھی ابھی اور بہت بہت سہولت کے ساتھ اچھا اس حکم سے پردہ شرعی کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور بہت سہولت کے ساتھ اوباش اور شرعی لوگوں سے حفاظت بھی رہ گئیں غیر حرائر یعنی کنیزیں تو ان کی حفاظت کا انتظام اگلی آیت میں آئے گا ایک چیز کر سکتے ہیں اس کے پیکج ہے کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور بہت سہولت کے ساتھ اوباش اور شریر لوگوں سے حفاظت بھی رہ گئیں غیر حرائر یعنی کنیزیں سو ان کی حفاظت کا انتظام اگلی آیت میں آئے گا اگلی آیت کون سی لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ٹھیک ہے اس آیت میں باندیوں کی حفاظت ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس چہرے کے اور سر کے ڈھانکنے میں اگر کوئی کمی یا بے احتیاطی بلا قصد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا मेहरबान है, इसको माफ कर देगा, आगे लोगों को तंबीह की गई। यानी ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना इन चीज़ों में, वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, तो ये गफूर और रहीमा का जो तस्करा है ना, ये ऐसे ही नहीं होता, स्पेस फिलर नहीं होता, ये जगह जगह पुर करने के लिए अल्लाह ने कह दिया। ठीक है कि भाई कुरान में वजन पूरा नहीं हो रहा था तो अल्लाह ताला ने ये ऐड कर दिया, कान अल्लाहु गफूर रहीमा। नहीं, ये खामखा नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक होता है हुक्म के साथ कि भाई इस हुक्म के अंदर कमी बेशी हो गई तो अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग एट इट। ठीक है ना, एज लॉन्ग एज आप ट्राई कर रहे थे, अल्लाह ताला को मालूम है कि आपकी नीयत क्या है, इखलास है कि नहीं है, तो कमी को तय अल्लाह माफ कर देते हैं। तो फरमाए कि आगे उन लोगों को तंबीह की गई जो कनीजों को छेड़ा करते थे, और उन लोगों को भी जो एक दूसरी शरारत के मुर्तकिब थे, कि मुसलमानों के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाकर उनको परेशान करना चाहते थे। फरमाया ये खास असल मुनाफिकीन और आम मुनाफिकीन में से वो लोग जिनके दिलों में शहवत परस्ती की खराबी है, जिसकी वजह से कनीजों को छेड़ते और परेशान करते हैं, और इन्हीं मुनाफिकीन में वो लोग। अच्छा, तो ये क्या है, वल्लजीना फी कुलूबिहिम मरदुन, कि जिनके कुलूब के अंदर मर्ज है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुनाफिकून ये कोई अलग लोग थे, और जिनके दिलों में मर्ज था ये कोई अलग लोग थे, और मुर्जिफून फिल मदीना ये कोई अलग लोग थे। नहीं, तीनों एक ही ग्रुप था। ठीक है ना, तीनों एक ही ग्रुप था, लेकिन इस ग्रुप के अंदर ये तीनों खासियतें शामिल थी। यानी ये झूठ भी बोलते थे, अपने ईमान को यानी अपने कुफर को छुपाते भी थे, यानी मुनाफ़िकत, और इनके दिनों में मर्ज भी था। ठीक है, यानी मर्ज जो है उसकी वजह से एक तो ये मुनाफ़िकत करते थे ना, लेकिन इनके दिनों के अंदर और रूहानी अमराज इनको हम कहते हैं। ठीक है, यानी शहवत जो है वो अपने हदूद से आगे बढ़ी हुई थी, गुस्सा हदूद से आगे बढ़ा हुआ था, तकब्बुर और उजब अपने हदूद से आगे बढ़ा हुआ था, तो इनके दिलों में मर्ज भी था, और साथ साथ ये अफवाहें फैलाने वाला वाला काम भी करते थे। तो ये एक ही ग्रुप था। ये हो सकता है कि इस ग्रुप के अंदर, यानी इस एक ही ग्रुप के अंदर कुछ लोग मुर्जिफून वाला काम ज्यादा करते हो दूसरों के मुकाबले में, और कुछ लोग जो है वो छेड़ा छाड़ी वाला काम ज्यादा करते हो दूसरों के मुकाबले में। ठीक है ना, और कुछ लोग जो है वो मुनाफिकत वाला काम ज्यादा यानी अय्यारी के साथ करते हो दूसरों के मुकाबले में, तो ऐसा तो मुमकिन है, लेकिन ये कोई अलग अलग ग्रुप्स नहीं थे, तीन अलग अलग ग्रोह नहीं थे, बल्कि एक ही ग्रोह था। ठीक है, तो इनके बारे में फरमा रहे हैं कि ये लोग जो है ना, ये लोग फिर और क्या करते थे कि मदीना मुनव्वरा में झूठी और परेशान करने वाली अफवाहें उड़ाया करते थे। ये लोग अगर अपनी इन हरकतों से बाज ना आए तो जरूर एक ना एक दिन हम आपको उन पर मुसल्लत कर देंगे, यानी उनके मदीना से इखराज का हुक्म कर देंगे, यानी आपको को इनके ऊपर जो है वो बालादस्ती हासिल हो जाएगी और आप इनको यहाँ से निकाल देंगे। फिर इस हुक्म के बाद ये लोग आपके पास मदीना में बहुत ही कम रहने पाएंगे, यानी थोड़े दिन की बात होगी, आप इनको निकाल बाहर करेंगे, जैसे कि यहूद के कबाइल के साथ फिर मुसलमानों ने किया। फिर इस हुक्म के बाद ये लोग आपको मदीना में बहुत ही कम रहने पाएंगे, वो भी हर तरफ से फटकारे हुए, यानी मदीना से निकल जाने का सामान करने के लिए जो कुछ कलील मुद्दत मुअय्यन की जाएगी, इस मुद्दत में तो ये यहाँ रह लेंगे, और इस मुद्दत में भी हर तरफ से जलील व ख्वार होंगे, फिर निकाल दिए जाएंगे, और निकालने के बाद भी कहीं अमन ना होगा, बल्कि जहां मिलेंगे पकड़ धकड़ और मार धाड़ की जाएगी। ठीक है, ये पकड़ धकड़ के बारे में तो आगे बात आएगी, लेकिन ये जो यहूद के साथ हुआ ना कि मदीना मुनव्वरा से जलील और रसवा होकर के इनको निकलना पड़ा, तो ये उस वक्त से इस जिल्लत और ख्वारी का बदला लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, और दज्जाल का जमाना जब आएगा, जो कि अब तकरीबन पहुंच ही चुके हैं उस लेवल पे, बताया ऐसा लगता है कि दज्जाल के जमाने तक पहुंच ही चुके हैं, तो इस जमाने में ना ये अच्छी खासी कामयाबी भी हासिल कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, मदीना मुनव्वरा के हरम के अंदर घुस नहीं पाएंगे, लेकिन सिर्फ किस वजह से नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि फरिश्ते हिफाजत कर रहे होंगे अल्लाह के हुक्म से। फरिश्ते क्या मतलब, इंसान हिफाजत नहीं कर पाएंगे मदीना मुनव्वरा की। ठीक है, इंसान नहीं खड़े होंगे मदीना मुनव्वरा के हरम की बाउंड्रीज के ऊपर कि इनको अंदर नहीं घुसने देंगे, नहीं, इंसानों के बस से ये चीज बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर कौन बचाएगा मदीना मुनव्वरा के हरम को? अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते बचाएंगे। ओके, क्या मतलब कि मदीना मुनव्वरा के हरम तक पहुंच जाएंगे, अंदर नहीं आ सकेंगे लेकिन वहां तक तो पहुंच जाएंगे ना। तो ये क्यों पहुंचेंगे? ये उसी अपने जिल्लत और खौरी का बदला लेने के लिए पहुंचेंगे, ठीक है। और आपको पता है खैबर जो है ना, ये हरम मदीना में शामिल नहीं है, ठीक है। तो खैबर तक तो ये पहुंच जाएंगे, यानी खैबर के अंदर तक भी ये पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जो फरमाए के जहां मिलेंगे पकड़ धक्कड़ और मार धाड़ की जाएगी, वजह उसकी ये कि मुनाफिकीन के कुफर का मुक्तजा तो यही था लेकिन निफाक की आड़ में उनको पनाह मिली है, ठीक है। जब अलन ऐलान ऐसी मुखालिफतें करने लगेंगे तो वो माने उड़ गया, यानी ये चूंकि अब झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को मुसलमान साबित कर रहे हैं ना, तो नबी अलैहिस्सलाम किसी ऐसे शख्स को मारते नहीं थे कि जो कि जुबान से इकरार करता था कि मैं मुसलमान हूँ, जुबान से कहता था कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, बेशक दिल से वो काफिर हो, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उससे यानी सरफ नजर करते थे, ठीक है ना। तो अब तक ये बचे हुए क्यों थे? अपने झूठ की वजह से बचे हुए थे, लेकिन अगर ये अलल ऐलान मुखालफतें करने लगेंगे तो फिर ये माने भी उठ जाएगा, यानी अब जो है ना इनको मुसलमान तस्लीम करने की जो एक एक्सक्यूज थी वो एक्सक्यूज भी खत्म हो जाएगी। इसलिए इनके साथ भी कुफर के असली इक्तजा के मुवाफिक मामला होगा, यानी जैसे काफिरों के साथ मामला किया जाता है वैसे इनके साथ भी मामला होगा कि उनका इखराज और कैद और कत्ल सब जायज है, अगर हरबी है, ठीक है ना। काफिरों की भी दो किस्में होती है ना, एक वो होते हैं जो कि हरबी काफिर होते हैं, यानी जिनके साथ आपकी जंग चल रही है अलल ऐलान, वो हरबी काफिर होते हैं, और जिनके साथ आपका अमन चल रहा है, ठीक है, वो हरबी काफिर नहीं होते, तो वो जो है वो यानी मामून काफिर होते हैं, और मामून काफिर को कत्ल करना जायज नहीं है, ठीक है। जैसे कि आजकल मुल्कों के दरमियान मुआहदे हैं, काफिर मुल्क हैं लेकिन मुसलमान मुल्कों के साथ उनके जो जो सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस के जो भी एग्रीमेंट ट्रीटी है या लीग ऑफ नेशंस था उससे पहले, तो वो सब क्या है कि जी हम आपके अटैक नहीं करेंगे, आप हम पे अटैक नहीं करेंगे, तो ये अमन का मुआहदा होता है, एक अंडरस्टूड मुआहदा होता है, ठीक है। तो अब आप किसी मुल्क में ऐसी डाकर के कत्ल करना नहीं शुरू कर देंगे, ये तो काफिर है तो हम तो उसको मार सकते हैं, नहीं कर सकते इस तरह से। उसी तरह आप जब किसी काफिर मुल्क में जाते हैं, ठीक है भाई, कितने मुसलमान जो है वो कभी कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, तो वहां जाकर के आप कत्ल तो नहीं कर सकते ना कि जी काफिर इनको कत्ल करना, इसलिए क्योंकि जब आप उस मुल्क में जाते हैं तो उस मुल्क का वीजा लेकर के जाते हैं, और वो वीजा जो है वो आपने एक एग्रीमेंट साइन किया होता है जब भी आपको वीजा मिलता है कि जी हम वहां पे जाकर के ना उस मुल्क के कवानीन की पाबंदी करेंगे, ठीक है। तो ये जो काफिर है ये हरबी काफिर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर हरबी काफिर की बात हो रही है, और हरबी काफिर का इखराज और कैद और कत्ल सब जायज है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो हमारे उलमा दहशत गर्दी जो जो टर्म चली है ना इस दौर के अंदर, तो दहशत गर्दी के खिलाफ फतवा क्यों देते हैं हमारे उलमा, क्यों देते हैं? इसी वजह से देते हैं कि भाई आपने यानी इनको हरबी काफिर के तौर पर आप ट्रीट नहीं कर सकते ना। आगे चलें कि अगर खुरूज के लिए कुछ इद्दत मुअय्यन हो जाए तो इस मुद्दत के अंदर बवजह मुआहदे के आप मामून होंगे। इसके बाद जहां मिलेंगे अहद खत्म हो जाने, अच्छा अगर खुरूज के लिए कुछ इद्दत मुअय्यन हो जाए कि जी अभी जो यहूदी हैं इनको आपने 2 महीने का टाइम दिया है, इसके बाद ये निकलेंगे, ठीक है। तो जो दो महीने का टाइम आपने इनको दिया है अपना सामान इकट्ठा करने के लिए और मूविंग के लिए जो कुछ करना होता है इंसान को, तो इन 2 महीनों के अंदर ये मामून होंगे, ठीक है। और उसके बाद जहां मिलेंगे अहद खत्म हो जाने की बिना पर उनके कत्ल कैद की इजाजत होगी, ठीक है, क्योंकि ये हरबी है। मुनाफिकीन को जो ये धमकी दी गई इसमें कनीजों को छेड़ने का भी इंतजाम और दूसरी शरारतें शरारत अफवाहें फैलाने का भी इंसदाद हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अलल ऐलान अब हरबी हो गए और हरबी के साथ जो है ना वो फिर सदा वाला मामला हो जाता है। तो अब ये है कि धमकी है, अगर तुमने हमारे खिलाफ किसी किस्म का भी काम किया, हमारी यानी हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया या हमारी कनीजों को नुकसान पहुंचाया किसी भी तरीके से जहनी या जिस्मानी, तो हम तुम्हें पकड़ के मारेंगे, ठीक है। मतलब आयत का ये हो गया कि अगर ये लोग अलल ऐलान मुखालिफत अहकाम और मुसलमानों के खिलाफ हरकतों से बाज आ गए वो अपनी दरपर्दा मुनाफिकाना चालों में लगे रहे तो ये सजा जारी नहीं होती। ठीक है, तो सजाएं कब जारी होती हैं? जाहिर की बेसिस पर जारी होती है। ठीक है, तो अगर ये जाहिरी तौर पर मुखालफत नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर छुपे हुए अंदाज में मुखालफत कर रहे हैं, तो ये सजाएं जारी नहीं की जाएंगी। ठीक है, वरना फिर आम कुफार के हुक्म में दाखिल होकर सजा वारे सजा हो जाएंगे। और फसाद और शूरश पर सजा जारी करना कुछ इन्हीं के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इन मुफसिद लोगों में भी अपना यही दस्तूर जारी रखा है जो उनसे पहले होके गुजरे, कि उनको आसमानी सजाएं दी या अंबिया के हाथ से जिहाद के जरिए सजाएं दिलवाई हैं। ठीक है, तो ये भी कोई पहला हुक्म, पहली दफा हुक्म नहीं आया कि जी जो हर भी काफिर होगा उसको सजा दी जाएगी, बल्कि ये पहले भी हमेशा से चलता चला आ रहा है। बस अगर पहले ऐसा ना हो चुकता तो ऐसी सजा में कुछ कुछ इस्तेबाद हो सकता था, यानी अगर पहली दफा ऐसी सजा इम्प्लीमेंट की जा रही होती ना, तो भाई कोई कहता कि भाई ये कौन सी नई चीज आ गई और ये तो बड़ी बड़ा अजीब बात हो गई है कि जी आप काफिरों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दें। भाई ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले से सिलसिला चला आ रहा है। तो इसी वजह से ना ये कहते हैं कि सुन्नत अल्लाह फिल लदीना खलव मिन कबल, ये तो अल्लाह ताला की सुन्नत है जो कि पहले लोगों में भी चल रही थी। जैसे कि अच्छा, जैसे कि रमजान का, रोजों का जो हुक्म है, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्योंकि रोजा रखना भी जो है ना ये भी एक मुश्किल चीज थी, ये भी एक पाबंदी वाली चीज थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला इस तरह की मामलात में ना जिसको कि इंसान के लिए अडॉप्ट करना जरा मुश्किल हो जाए, तो अल्लाह ताला ये बता देते हैं कि भाई ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है बल्कि पहले से चली आ रही है। ठीक है, यहां पर भी वही मामला है, रोजों में भी वही मामला था। ठीक है, अच्छा, और आप अल्लाह ताला के दस्तूर में किसी शख्स की तरफ से रद्दो बदल नहीं पाएंगे। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाही तब्दीला, कि खुदा तो कोई हुक्म जारी करना चाहे और कोई उसको रोक सके। लफ्ज़ सुन्नत अल्लाह में तो इसका इजहार कर दिया कि अल्लाह ताला की मशीयत तो इरादे से पहले कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से एक इजाजत ना हो जाए, एक एक ओपनिंग ना हो जाए, उस वक्त तक कोई काम नहीं हो सकता। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाही तब्दीला में ये बतला दिया कि जब अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा फरमा ले तो कोई उसको रोक भी नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, मारुफ मसाइल में फरमाते हैं कि साबिका आयात में आम मुसलमानों मर्दों और औरतों को ईजा पहुंचाने का हराम और गुनाह कबीरा होना, और खुसूसन सैयदुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईजा का कुफर मुजब लानत होना बयान फरमाया गया है। मुनाफिकीन की तरफ से दो तरह की ईजाएं सब मुसलमानों को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचती थी। आयात मस्कूरा में उन ईजाओं के इंसिदाद का निजाम का इंतजाम है, और इसके ज़मन में औरतों के पर्दे की कुछ मजीद अहकाम का बयान एक मुनासिबत से आया है जो आगे मालूम हो जाएगी। इसी ईजाओं के ही बचने के ज़मन में ना पर्दे के अहकाम भी आ गए। इन दोनों ईजाओं में एक ये थी कि मुनाफिकीन के आम और आवारा किस्म के लोग मुसलमानों की बांदियों कनीजों को जब वो कामकाज के लिए बाहर निकलती छेड़ा करते थे। ठीक है, क्योंकि मुनाफिकीन की जो अक्सरियत थी वो यहूदी थी और कुछ अरब भी थे। ठीक है, यानी अंसार में से भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि मुनाफिकीन थे, अंसार में से नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा के पुराने जो रहने वाले थे, तो उनमें से भी कुछ मुनाफिकीन थे। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई, ये कोई यहूदी नहीं था, ये तो अरब था ना, मदीना का रहने वाला था ये तो। ठीक है, तो ये अरब था लेकिन ये मुनाफिकीन का सरदार था, तो अब मुनाफिकीन में भी उसी तरह के यानी सोशल डिस्टिंक्शन थी कि कुछ लोग जो थे वो खानदानी किस्म के लोग थे, पढ़े लिखे किस्म के लोग थे, जैसे ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, ये सरदार था कबीले का, तो ये आवारा और अवाश बंदा नहीं था। उसी तरीके से जो यहूद के उलमा थे, ठीक है, तो वो कोई आवारा और अवाश लोग नहीं थे, लेकिन हर बंदा तो आलिम नहीं होता ना। ठीक है, तो जो आवारा लोग थे ना, यानी छोटे किस्म के लोग जो कि मीनियल किस्म के काम करते हैं, तो वो फिर ये हरकत किया करते थे। ठीक है कि मुसलमानों की बांदियों और कनीजों को जब वो कामकाज के लिए बाहर निकलती थी तो छेड़ा करते थे, और कभी कनीजों के शुबे में हरायर को सताते थे, यानी आजाद औरतों को भी सताते थे, जिसकी वजह से आम मुसलमानों को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचती थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में कोई मुसलमानों ने आकर के कोई वैसा एक स्टेट सिस्टम नहीं बना दिया था जैसा कि हम आम एक मुआशरे में देखते हैं। ठीक है, चाहे वो वेस्टर्न मुआशरा हो या चाहे वो कोई ईस्ट का बहुत ही वेल डेवलप्ड कंट्री हो, कि वहां पर जी पुलिस फोर्स होती है और वहां पर कैमरा सिस्टम भी होता है, यानी बाकायदा जो है वो पकड़ पकड़ के लोगों को जो है वो प्रिजन में बंद कर दिया जाता हो, सजा दी जाती हो। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो है ना उस वक्त डेवलप नहीं हुआ था। अभी जो थे मुसलमान वो काफिरों के साथ साथ ही रह रहे थे। ठीक है ना, यानी एक बड़ा लूज सा ये मुल्की निजाम था। ओके, जिसमें एक काजी तो होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी थे, लेकिन वो एक एक चीज को जो है ना वो ऐसे नहीं हैंडल कर रहे होते थे जैसे कि एक मुल्क का बादशाह जो है वो हैंडल किया करता है। ठीक है, सारे लोग तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे ना अपने लीडर के तौर पर। यहूदी, मुनाफिकीन, काफिरीन, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अभी तो मुसलमान अपना अपनी जगह बना रहे थे इस मुआशरे के अंदर। तो इस वजह से ऐसे लोग जो है वो मुसलमानों की औरतों को खत्म किया करते थे। दूसरी ईजा ये थी, ये लोग हमेशा ऐसी झूठी खबरें उड़ाते थे कि अब फुला गनीम मदीने पर चढ़ाई करने वाला है, यानी फुला गनीम से मुराद फुला कबीला मदीने पर चढ़ाई करने वाला है और वो सबको खत्म कर देगा। आयात है मस्कूरा में पहली ईजा से हरायर यानी आजाद बीवियों को बचाने का फौरी और सहल इंतजाम ये हो सकता था कि उनको ये लोग उनके खानदान की वजाहत और हिमायत की वजह से बिलकसद छेड़ने की जुर्रत ना करते थे। कभी कनीजों के शुभों में ये भी उनकी छेड़छाड़ की जद में आ जाती थी, अगर उनकी पहचान हो जाती तो ये नौबत नहीं आती। इसलिए जरूरत पेश आई कि हरायर का कोई खास इम्तियाज हो जाए ताकि आसानी के साथ खुद बखुद ही कम अज कम हरायर तो इन शरीरों के फसाद से फौरी तौर पर महफूज हो जाए। और कनीजों का फिर दूसरा इंतजाम किया जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हरायर का क्या इंतजाम किया कि उनको पर्दे का हुक्म दिया। अच्छा, ये पर्दे का हुक्म अगर ये आप सुनाएंगे ना, आजकल की जो ये जो कल पता लगा मुझे कोई वुमेन्स मार्च हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर इंतहाई बेहुदा और यानी बेशरम किस्म के उन्होंने नारे लगाए हैं और प्लेकार्ड कार्ड उठाए हैं और न जाने क्या क्या, अब आ रही हैं कुछ चीजें लोगों की तरफ से पढ़ने को, फिर से पता लग रहा है कि क्या हुआ है। ऐसे लोगों के सामने अगर आप इस बात को रखेंगे तो वो तो यही कहेंगे, हाँ भाई उस जमाने में नीट थी, फिर वो खत्म हो गई नीट, अब तो वहां पे कनीज, अब तो हमारे यहाँ तो कनीजों और हराइन में कोई कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ना, तो अब जिस तरह कनीजों का मामला था उसी तरह हमारा भी मामला है, क्योंकि अब उसकी जरूरत रही नहीं। तो इसका आप क्या जवाब देंगी? इसका जवाब ये होगा कि पर्दे के हुक्म का हुक्म जो है वो सिर्फ यहाँ तो नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट है कि कनीजों से डिस्टिंक्शन करनी थी, लेकिन पर्दे का हुक्म तो सूरह यानी अहज़ाब की पिछली आयात में जो हम पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा जो सूरह नूर की आयात के अंदर पर्दे के अहकाम है, तो वो सभी तो इसके अंदर शामिल है ना। तो सब कुछ जब जमा करके अहकाम निकाले जाएंगे तो वही अहकाम निकलेंगे जो कि आज तक मुसलमान मुआशरे में राइज हैं। दूसरी तरफ शरीयत इस्लाम ने हरायर और कनीजों के पर्दा शरी में बजरूरत एक फर्क भी रखा है कि कनीजों का शरी पर्दा वो है जो हरायर का अपने महरमों के सामने होता है। कनीजों का शरी पर्दा जो हरायर का अपने महरमों के सामने, क्या मसलन चेहरा वगैरह खोल, जो हरायर के लिए अपने महरमों के सामने जायज है। ठीक है, अब ये अगर आपको याद हो कि हमने रमजान मुबारक में जो सूरह नूर की तफसीर पढ़ी थी, तो सूरह नूर की तफसीर में भी ना जहां पर अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं कि किस किस से पर्दा करना जरूरी है। ठीक है, तो वो आयत क्या थी, कुल लिल मोमिनीना यगुदू मिन अबसारिहिम व यहफुदू फुरूजहुम। ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ठीक है ना, ला يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. यहां से शुरू होता है ठीक है, कि अपनी ओढ़नी अपने गिरेबान पर डाल लें, ना खोलें अपनी जीनत सिवाय अपने शोहरों के ऊपर, औ आबाइहिन्न अपने बापों के ऊपर, औ आबाई बुउलतिहिन्न और अपने ससुरों के ऊपर. ठीक है, तो यहां पे एक मिनट, तो यहां पे ना सारे वो महरम रिश्तेदार गिनवा दिए थे कि जिनसे पर्दा नहीं होता. ठीक है, लेकिन यहां पर तफसीर में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात लिखी थी. ठीक है ना, अजीब बात क्या लिखी थी, वो ये लिखी थी कि शौहर के सिवा दूसरे महारिम को जो मुस्तस्ना किया गया है वो अहकाम हिजाब और पर्दे से इस्तिस्ना है. ठीक है, यानी हिजाब और पर्दे से, कि इनके सामने हिजाब नहीं है, सतरे औरत से इस्तिस्ना नहीं. औरत का जो सतर, औरत का जो बदन सतर में दाखिल है, जिसका खोलना नमाज में जायज नहीं. क्या कह रहे हैं, यानी जो नमाज का सतर है, नमाज का सतर क्या होता है, नमाज का सतर चेहरा यानी चेहरे और हाथों के अलावा, चेहरे हाथ और पैर ठीक है ना, इनके अलावा पूरा बदन होता है, बाल भी शामिल होते हैं उसके अंदर. ठीक है ना, अगर बाल भी खुले रह गए तो नमाज नहीं होगी, और इसी तरह बाकी सतर में से कुछ भी खुला रह गया तो नमाज नहीं होगी. राइट, तो नमाज का जो सतर है ना, जो नमाज में खोलना जायज नहीं, उसका देखना महारिम के लिए भी जायज नहीं. ये मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखा था. ठीक है, अच्छा अब ये तो बड़ा मसला हो गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि कम से कम कलाइयां तो खुल जाती हैं ना, कम से कम कलाइयां ठीक है ना, और पैर का भी कुछ हिस्सा खुल सकता है महरमों के सामने, महरम मर्दों के सामने. ठीक है, तो इसी वजह से देखें मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू ने इसके ऊपर एक फुट नोट लिखा था. ठीक है, सूरह नूर जिल्द नंबर 6 मारफुल कुरान की, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने फुट नोट में लिखा था कि यहां मसले में थोड़ी सी तफसील है जो बयान होने से रह गई है. वो तफसील ये है कि औरत के सतर का वो हिस्सा जो नाफ और घुटनों के दरमियान है, यानी औरत का जो मिनिमम सतर है ना, यानी जो कि महरम के लिए भी देखना जायज नहीं है, वो क्या है, नाफ से लेके घुटने तक. ठीक है, नीज पेट और कमर, और यानी इन एडिशन टू दैट पेट और कमर जो है वो भी महरम के लिए देखना जायज नहीं है. ठीक है, अलबत्ता इसके अलावा बदन के दूसरे हिस्से, ठीक है, यानी पेट और कमर के अलावा जो बदन के दूसरे हिस्से हैं, मसलन सर, कलाइयां, पिंडरी, ठीक है, यानी घुटने के नीचे जो पैर का हिस्सा होता है, वो महरम के सामने खोली जा सकती हैं. ठीक है, क्या मतलब खोली जा सकती हैं, कि औरत घर के अंदर जैसे कि यहां पर होता है, ठीक है, वो स्कर्ट्स पहन करके घर में रहती हैं, और जो है वो स्लीवलेस शर्ट्स पहन करके घर में रहती हैं. ठीक है ना, और टी शर्ट भी जो है वो ऐसी, अल्लाह माफ करे, क्योंकि घर के अंदर उनके बकौल जो है वो महरम होते हैं, हालांकि वो हाउस बॉय जो होता है वो तो महरम नहीं होता ना भाई, लेकिन खैर जब हरम, जब क्या होती है, हया खत्म हो जाती है, तो फिर फफअल मा शिता, जो चाहे तू कर. ठीक है ना, तो यही होता है कि जब अपने बाप से और अपने भाई से और बेटे से हया खत्म हो गई, तो फिर वो आगे बढ़ती है और हाउस बॉय से भी खत्म हो जाती है, घर के नौकर से भी खत्म हो जाती है, तो फिर उसमें तो आगे कोई लिमिट नहीं होती ना. लेकिन ये जो फिरती हैं या इस तरह के जो कपड़े पहनती हैं अपने घरों के अंदर, तो वो दलील कहाँ से लाती हैं, कुरान से दलील लाती हैं, ऐसे बगैर दलील के काम नहीं करती, कुरान से दलील लेकर के आती हैं. तो क्या कहती हैं कि जी ये सब तो खोला जा सकता है, तो स्कर्ट्स पहनी जा सकती हैं अपने घरों के अंदर, लेकिन उलमा को नहीं मानते ना, क्योंकि इन्होंने क्या तरवीज, क्या चीज राइज करी अपने मुआशरे में, उलमा की बात ना मानो. ठीक है ना, उलमा की बात ना मानो, गैर मुकल्लिद बनकर रहो, गैर मुकल्लिद बनकर रहो. तो गैर मुकल्लिद बनकर जब आप रहना शुरू हो गए, तो अब उलमा की जो 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 वो होंगी, सजेशंस होंगी, और उलमा की जो आपको नसीहतें होंगी उन पर तो फिर आप कान नहीं धरेंगे ना, ठीक है ना। तो उलमा ने बताया ना कि भाई जमाना चूंकि फितने का है, जमाना फितने का कैसे है कि आपने टीवी को घर में दाखिल कर दिया, आपके मुल्क के अंदर टीवी तो आ चुका है ना, जब टीवी आ गया तो अमेरिका में जो होता है वो आपके घर में मौजूद है, तो आपके घर के जो महरम मर्द हैं, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका बाप भी है, आपका ससुर भी है, वो टीवी तो देखता है और टीवी में तो किसी चीज की पाबंदी नहीं होती, राइट। इंटरनेट देखता है, यूट्यूब देखता है, उसमें तो किसी चीज की पाबंदी नहीं होती, ठीक है ना। तो जब वो ये सारी खराफात देखेगा तो ये सारी की सारी चीजें उसकी निगाहों से होते हुए उसके दिल में पहुंचेंगी ना, ठीक है ना। जब दिल में वो पहुंच गई तो अगरचे के वो आपका महरम रिश्तेदार है, लेकिन महरम की जो गैरत होती है, महरम की जो जो हिफाजत का एक उसके अंदर जज्बा होता है अपनी औरतों की, वो जज्बा तो खत्म हो जाएगा ना, तो वो हिफाजत करने वाला नहीं रहेगा, अब उसकी निगाहें पाक नहीं रह सकती। जब वो बदनजरी का मुर्तकिब होता है, अब उसकी निगाहें पाक नहीं रह सकती, अब उसके दिल के अंदर तो जिना का मर्ज पैदा हो चुका है। तो अब ये जमाना जो है ना, ये वो वाला जमाना नहीं है टीवी के पहले जो जमाना होता था, अब ये टीवी के बाद वाला जमाना है, अब ये जमाना बहुत मुख्तलिफ हो चुका है। तो इस वजह से इस दौरे जमाने में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जानते थे, ठीक है ना, उनको अल्लाह ताला ने जो बसीरत अता फरमाई थी उस बसीरत के तहत उन्होंने बात लिखी है, उनके पास इल्म की कमी नहीं थी कि उन्होंने ला इल्मी में उन्होंने गलत अहकाम लिख दिए शरीयत के, नहीं, उनको पता था कि जमाने में क्या हो रहा है, वो टीवी को देख चुके थे कि टीवी इस मुआशरे में दाखिल हो चुका है। तो उन्होंने क्या लिखा कि महरम के सामने सिर्फ उतना ही खोलना जायज है जितना नमाज में खोलना जायज है, ठीक है। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसको बस एक्सप्लेन कर दिया कि अलबत्ता जमाना चूंकि फितने का है, इसलिए बिला जरूरत खोलने की आदत डालना मुनासिब नहीं है। तो भाई वो जो अल्लाह ताला ने रिलैक्स किया है ना, तो वो जरूरत के तहत रिलैक्स किया है, क्योंकि घर के अंदर जिस तरह से कि आपका यानी आपके कामकाज चलते रहते हैं, आपने किचन का भी काम करना है, आपने वॉशिंग मशीन का भी काम करना है, आपने झाड़ू भी देनी है, आपने कचरा भी उठाना है, आपने झुकना भी है, तो अब अगर बिल्कुल ही वो हराम हो जाएगा महरम के सामने भी, तो फिर तो यानी हरज वाला मामला शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरत की वजह से ना इसकी रिलैक्सेशन दी गई है, इसलिए नहीं कि आप स्कर्ट पहन के घूमना शुरू कर दें अपने घर के अंदर, और स्लीवलेस शर्ट्स पहन के घूमना शुरू कर दें अपने घर के अंदर, या जो है वो टाइट किस्म के कपड़े पहन करके जो है वो अपने शोहर के अलावा दूसरे मर्दों के सामने घूमना शुरू कर दें, ये नहीं है इजाजत, इसकी इजाजत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहां पर फरमाया कि उसी तरफ इस्लाम ने हदायत, ये तो हो गया ना। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। तो दूसरी इजा ये थी कि ये लोग हमेशा ऐसी झूठी खबरें उड़ाते थे कि अब फलां गनी मदीने पे चढ़ाई करने वाला है वगैरह, तो इससे और ये कि कनीजों को ये छेड़छाड़ किया करते थे, तो उससे बचने का क्या इंतजाम फरमाया कि पहचान हो जाती थी तो ये नौबत नहीं, पहचान हो जाती तो ये नौबत ना आती, तो फिर हराइर को जो है ना फिर अल्लाह ताला ने इस तरह से डिस्टिंग्विश कर दिया कनीजों से। तो दूसरी तरफ शरीयत इस्लाम ने हराइर और कनीजों के पर्दा शरी में बजरूरत एक फर्क भी रखा कि कनीजों का शरी पर्दा वो है जो हराइर का अपने महरमों के सामने होता है, कि मसलन यानी मुफ्ती शफी साहब जो बात सूरह नूर में लिखी थी ना, उसी बात पर यहां पर कायम है कि क्या है महरमों के सामने, चेहरा वगैरह खोलना जो हराइर के लिए अपने महरमों के सामने जायज है, कनीजों के लिए भी के लिए बाहर भी इसकी इजाजत इसलिए दी गई कि उनका काम ही अपने आका और उसके घर की खिदमत है, जिसमें उनको बाहर भी बार बार निकलना पड़ता है, ठीक है, और चेहरा और हाथ मस्तूर रखना मुश्किल हो जाता है, बखिलाफ हराइर के कि उनको किसी जरूरत से बाहर निकलना भी पड़े तो कभी कभी होगा, जिसमें पूरे पर्दे की रियायत मुश्किल नहीं है। इसलिए हराइर को यह हुक्म दिया गया कि कि वो लंबी चादर जिसमें मस्तूर होकर निकलती हैं उसको अपने सर पर से चेहरे के सामने लटका लिया करें ताकि चेहरा अजनबी मर्दों के सामने ना आ जाए। इससे उनका पर्दा भी मुकम्मल हो गया और बांदियों कनीजों से इम्तियाज खास भी हो गया, जिसके सबब वो शरीर लोगों की छेड़छाड़ से खुद ब खुद मामून हो गईं और कनीजों की हिफाजत का इंतजाम इन मुनाफिकीन को सजा की वईद सुनाकर किया गया कि इससे बाज ना आए तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी अपने नबी और मुसलमानों के हाथों सजा दिलवाएंगे। यानी ये नहीं कहा गया कि तुम ये जो काम करोगे ना तो हम आखिरत में तुम्हें पकड़ेंगे, नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर तुम्हें सजा दिलवाएंगे। कि तो मोमिनीन की फिर ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि ऐसे लोगों को दुनिया में भी अपने अदालती निजाम के जरिए से सजा दी जाए। ठीक है, आयत मज़कूरा में हुर्रा यानी आजाद औरतों के पर्दे के लिए यह हुक्म हुआ है कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि युदनीना, अच्छा इसमें युदनीना इदनाउन से मुश्तक है जिसके लफ्जी मानी करीब के हैं। ठीक है, अदना युदनी इदनाउन, ठीक है, तो इदना इसका मस्दर हो गया, इसका मतलब है करीब के, करीब करना, और लफ्ज अलैहिन्ना के मानी अपने ऊपर, यानी करीब कर लो अपने ऊपर, मिन जलाबी भी हिन्ना, और जलाबीब ये जमा है जलबाब की, जो एक खास लंबी चादर को कहा जाता है। ठीक है, यानी लिबास का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जैसे कि मियां बीवी के ताल्लुक में इस्तेमाल किया था, बल्कि यहां पर जलबाब का लफ्ज इस्तेमाल किया। इस चादर की हैयत के मुतालिक हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो चादर है जो दुपट्टे के ऊपर ओढ़ी जाती है। ठीक है, यानी ये इट हैज टू बी लूज, लिबास की तरह से ये आपके बदन के शेप के साथ नहीं हो सकती। ठीक है ना, वो लिबास होता है, ये जलबाब है जो कि लूज होना चाहिए लेकिन करीब भी हो। ठीक है, तो यही फर्क है लिबास में और जलबाब के अंदर कि ये लूज है। तो इससे क्या पता लगा कि जो अबाया पहना जाता है ऊपर से जो चादर डाली जाती है वो टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए। हजरत इब्ने अब्बास ने इसकी हैयत ये बयान फरमाई, अमर अल्लाह निसा अल मोमिनीना इदा खरजना मिन बुयूतिहिन्ना फी हाजतिन, कि अल्लाह ताला ने आम मुसलमानों की औरतों को हुक्म दिया कि जब वो किसी जरूरत से अपने घरों से निकले तो अपने सरों के ऊपर से ये चादर लटका कर चेहरों को छुपा लें और सिर्फ एक आंख रास्ता देखने के लिए खुली रखें। ठीक है, यानी रास्ता देखने के लिए जितनी जरूरत है उतना मामला जो है खुला रखें, उससे ज्यादा खुला ना रखें। ठीक है, अब वो बात पीछे हो चुकी है हमारी कि जी एक आंख हो या दो आंखें हो, आज भी जो हमारे कबायली इलाके हैं तो वहां पर वजीरिस्तान वगैरह जैसे इलाके जो है ना, वहां सुना हमने कि वहां पर अभी भी इसी किस्म का पर्दा होता है एक आंख वाला। तो चले भाई, एक आंख से आपको वन डायमेंशनल व्यू मिलता है, आप जो है वो गिर जाती हैं, आपको चोट लगती है, तो दो आंखों की, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं ना। लेकिन अब क्या होता है कि वो जो खोलने वाले होते हैं तो फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा सरकाना शुरू कर दिया, अब जो है वो नाक भी खुलनी शुरू हो गई है। ठीक है ना, और थोड़े थोड़े दिन के बाद फिर वो मुंह भी खुलना शुरू हो जाता है, ये तो तदरीजन होता है। ठीक है, तो दर्जा बदर्जा फिर वो खुलना शुरू होता है, जब इंसान का दिल नहीं होता किसी काम के अंदर ना, तो फिर वो बहाने बहाने से उसका कोई ना कोई यानी निकाल ही देता है उसमें से, यानी निकलने का रास्ता बना ही देता है। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत उबैदा सलमारी रहमतुल्लाह अलैह से इस आयत का मतलब और जलबाब की कैफियत दरियाफ्त की तो उन्होंने सर के ऊपर से चादर चेहरे पर लटकाकर चेहरा छुपा लिया और सिर्फ बाईं आंख खुली रखकर इदनाउन व जलबाबुन की तफसीर अमलन बयान फरमाई। ठीक है ना, तो अब ये तफसीर जो है वो हम जो अहले हक उलमा हैं उनसे लेंगे, किसी और से नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो वरना तो कहने वाला तो ये भी कह सकते ना, हाँ जी ये तो इन मौलवियों ने भी बड़ा वो रिलैक्स कर दिया कि यहाँ पे पहले तो असल में एक आंख थी, अब इन्होंने दोनों आंखें खोलने का कह दिया, तो मौलवी जो है जो चाहे करें। तो भाई मौलवियों को तो मामला अल्लाह ने रखा ही ऐसा है कि मौलवियों ने तफसीर करनी है। ठीक है ना, तो अब मौलवियों के अलावा अल्लाह ताला ने किसी को हक दिया ही नहीं, तो अब हम क्या करें यार भाई? ये हमारा तो मसला नहीं है कि अगर मौलवी जो है वो कोई फतवा दे रहे हैं या कोई जो है वो यानी किसी किस्म का कोई तब्दीली कर रहे हैं कुरान के अंदर, जो कुरान के अंदर तब्दीली तो नहीं कर रहे हैं ना, तफसीर के अंदर वो कह रहे हैं कि जी एक आंख की बजाय दो आंख। ठीक है, तो ये तो अल्लाह ने राइट दिया है उनको करने का, तो उनके उसके ऊपर हम इतराज नहीं कर सकते, लेकिन ये राइट उन्हीं तक रहेगा। ठीक है ना, इसको आपको यानी बंद करना पड़ेगा, इस क्या कहते हैं उसको कि कयास की का क्या उसूल है कि उसको अपने मौजे के मौजा के ऊपर ना मौजा मौजाउन जिसको कहते हैं मौजाउन के ऊपर बंद करना पड़ता है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो उलमा के ऊपर ही इसको रोकना पड़ेगा। उलमा उलमाए हक से आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते कि जी अब आपने कोई इस्लामी तंजीम बना ली, ठीक है ना, तंजीम इस्लामी के नाम से बना ली या आपने जमात इस्लामी के नाम से बना ली, ठीक है, अब वहां पे जो दीन के फिक्र रखने वाले लोग हैं और दीन के इकामत की मेहनत करने वाले लोग हैं, तो उनके पास भी ये राइट आ गया कि वो भी जो है वो डिफाइन करना शुरू हो जाए कि जी एक आंख की जगह दो आंख। नहीं, उनको ये राइट नहीं दिया गया, उनको वो तफसीली दीनी उलूम हासिल करने वाले सनद याफ्ता उलमा नहीं है, तो उनको हम ये राइट नहीं दे सकते। ठीक है कि जमात इस्लामी के लीडर जो है वो अपनी औरतों की निकाब डिफाइन करते फिरे कि जी उनकी औरतें कैसे जो है कैसे निकाब करेंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे कितने जानने वाले हैं अमरीका में जो पहले निकाब करते थे, जमात इस्लामी के अंदर पहले निकाब करते थे, अब कोई भी नहीं करता उनमें से, कोई भी नहीं करता इल्ला माशाल्लाह कोई होगी। ठीक है, तो ये उनके पास राइट नहीं है इसको डिफाइन करने का। ठीक है, तो फर्क जो है ना वो ये है कि किसके पास राइट है किसके पास राइट नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से इसकी तफसीर फरमाई, सर के ऊपर से चेहरे पर चादर लटकाना जो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उबैदा सलमानी के बयान में आया है, ये लफ्ज अलैहिन्ना की तफसीर है कि अपने ऊपर चादर को करीब करने का मतलब चादर को सर के ऊपर से चेहरे पर लटकाना है। ठीक है, इस आयत ने बसराहत चेहरे के छुपाने का हुक्म दिया है जिससे इस मजमून की मुकम्मल तायिद हो गई जो ऊपर हिजाब की पहली आयत के ज़ेल में मुफस्सल बयान हो चुका है कि चेहरा और हथेलियां अगरचे फी नफ्स ही सतर में दाखिल नहीं मगर बवजह खौफ फितने के उनको छुपाना भी जरूरी है, सिर्फ मजबूरी की सूरतें मुस्तस्ना है। अच्छा, अब तंबीह है जरूरी कि इस आयत में हुर्रा औरतों को एक खास तरह के पर्दे की हिदायत फरमाई कि चादर को सर के ऊपर से लटकाकर चेहरे को छुपा लें ताकि अदम आम कनीजों से उनका इम्तियाज हो जाए, क्योंकि कनीजों को जो है ना इसकी बाकायदा इजाजत ही नहीं थी कि इस तरीके से अपने चेहरे को छुपाएं और ये शरीर लोगों के फितने से महफूज हो जाए। मजकूर सदर बयान में ये बात वाजे हो चुकी है कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि इस्लाम ने इस्मत और इफ्फत की हिफाजत में हरायर और कनीजों के दरमियान कोई फर्क कर दिया कि हरायर की हिफाजत करवाई और कनीजों को छोड़ दिया, बल्कि दर हकीकत ये फर्क औबाश शरीर लोगों ने खुद कर रखा था। ठीक है, उनको उनका किया हुआ फर्क था और दीन इस्लाम ने ये फर्क नहीं रखा कि इनकी इज्जत की हिफाजत की जरूरत है और उनकी इज्जत की हिफाजत की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, लेकिन देखें अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी एक अजीब नुकता हमारे सामने आता है। ठीक है कि भाई ये कनीजों को एग्जेम्प्ट जो किया है तो एग्जेम्प्ट करने के बाद ये तो एक एहतमाली सूरत है ना कि जी अगर वो खुल्लम खुल्ला मुखालफत करना शुरू हो जाए तो फिर हम उनको सजा देंगे, लेकिन एट द मोमेंट तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी ना कि जी एक औरत बाहर निकल रही है, औरत कनीज औरत तो होती है ना, मर्द तो नहीं बन जाती ना, वो औरत ही होती है, औरत घर से बाहर निकल रही है घर के कामकाज करने के लिए निकल रही है। ठीक है, अब ये कामकाज जो है वो इतना अहम क्यों हो गए कि उसको जो है चेहरा खोलने की इजाजत मिल गई। ठीक है ना, एक एक मंतकी सी बात है कि ये कामकाज जो है वो इतने अहम क्यों हो गए कि उसको चेहरा खोलने की इजाजत मिल गई। ठीक है, तो एक बात जो सामने आती है वो ये कि देखें ये जो खुदाम का सिस्टम है मर्द खादिम हो या औरतें खादिम हो, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने खुदाम का सिस्टम बनाया है, जैसे कि पिछले दिनों हमारे जुमे की महफिल में भी ये बात हुई है कि अल्लाह ताला ने ये तबकाती निजाम बनाया है। ठीक है, तबकाती निजाम क्या कि कुछ को अमीर बनाया कुछ को मुतवस्सित बनाया कुछ को गरीब बनाया, ये तबकाती निजाम अल्लाह ने रखा है। ठीक है ना, अब इस तबकाती निजाम में अल्लाह ने हर तबके को दूसरे तबके का मोहताज बना दिया। कैसे, गरीब तो मोहताज होता है सभी समझते हैं ना कि गरीब को जो है वो अमीर के पैसे की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपनी चीजें खरीद सके, लेकिन अदर वे राउंड भी ये चलता है, अमीर भी गरीब का मोहताज होता है। वो कैसे मोहताज होता है अमीर गरीब का? ठीक है, गरीब ने उसको कोई पैसे तो नहीं देने होते, गरीब ने जो है वो यानी उसको कोई क्या क्या होता है, गरीब क्या प्रोवाइड करता है, गरीब गरीब उसकी खिदमत करने वाला होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, ठीक है। तो अगर गरीब के ऊपर पाबंदी लग गई कि जी तुम सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, तो फिर अमीर के काम कौन करेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ना ये जो एक सिस्टम था कि कनीजों और बांदियों को ऐसी, यानी ये जो थे ना, ये एक बहुत बड़ी नेमत थी अल्लाह ताला की मुसलमानों के पास, ठीक है, कि उनके घरों के अंदर कनीज और गुलाम हुआ करते थे, ठीक है ना। वो नेमत कैसे थी, वो ऐसे थी कि ये जो इंसान का घर चलता है ना, इंसान का घर, ये खुद ब खुद नहीं चलता, ये फरिश्ते आकर के इस घर का काम नहीं करते, किसी ना किसी से तो, यानी किसी ना किसी ने तो काम करने है ना, बर्तन किसी ने तो धोने, कपड़े किसी ने तो धोने, राइट, घर की सफाई किसी ने तो करनी है, बच्चों को किसी ने तो संभालना है, फरिश्ते तो नहीं करेंगे आकर के, जिन तो नहीं आप पाल सकते, राइट, जिन्नों को तो नहीं आप सैलरी दे करके अपने घर पे गुलाम रख सकते, तो क्या होगा, या तो आप ये सारे के सारे काम खुद करें, ठीक है, सारे के सारे काम खुद करें, जैसे कि हम लोग करते हैं, ठीक है ना, सऊदी अरब में जो रहते हैं और अमेरिका में जो रहते हैं, वो सारे के सारे सारे काम खुद कर रहे होते हैं, कम से कम मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं वो, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी को खादिम रखें, ठीक है ना, आप हाउस बॉय रखें, आप मेड रखें, ठीक है ना। तो ये हाउस बॉय या मेड जो है वो मिल जाए तो मिल जाए। पुराने जमाने में उस वक्त ये क्या था कि ये जो हाउस बॉय या मेड जो होते थे, ये अल्लाह ताला ने जिहाद के नतीजे में इनाम के तौर पर दे दिए थे, ठीक है, इनाम के तौर पर मुसलमानों के दिए थे कि देखो तुम अल्लाह की खातिर जो है ये जो काम करते हो ना, तो हम तुम्हें फ्री हाउस बॉय और फ्री मेड दे रहे हैं, ठीक है ना, और ऐसे फ्री हाउस बॉय मेड दे रहे हैं कि जिनके साथ जो है वो तुम्हें अच्छी खासी रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं, कि वो तुम्हारा काम करेंगे बाहर जाकर के, और उनके ऊपर ये पर्दे के अहकाम भी जो है वो रिलैक्स कर दिए तुम्हारी वजह से, ताकि तुम्हारे काम पूरी तरीके से कर सकें, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये लोग नहीं होंगे तो तुम्हें खुद सारे काम करने पड़ेंगे, और जब तुम खुद सारे ये वाले काम करोगे तो तुम्हारे दिन के जो 24 घंटे हैं वो 48 घंटे तो नहीं बन जाएंगे, ये तो मेरा उसूल है, अल्लाह की बनाया हुआ उसूल है ना, कि 24 घंटे 24 ही रहते हैं, राइट। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी 24 ही घंटे होते थे, आज भी 24 ही घंटे होते हैं दिन के अंदर, राइट। तो ये 24 घंटे बढ़ तो नहीं जाएंगे, तो क्या होगा कि जो काम तुम करते अपने आखिरत संवारने के लिए, दीन को मजबूत बनाने के लिए, तरबियत के लिए, वो काम तुम नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम तो वही है, बरकत तो एक अलग चीज होती है भाई, बरकत का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे जो है वो 36 घंटे बन जाते, वही वही रहते हैं। तो तुम, यानी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, यू विल नॉट बी एबल टू डू दोस थिंग्स, तुम दीन का इल्म नहीं हासिल कर सकोगे, थोड़ा बहुत कर लोगे, चलते फिरते भागते दौड़ते बर्तन धोते थोड़ा बहुत कर लोगे, राइट, लेकिन जिस तरह से इन उलूम को समझने की और आगे फैलाने के लिए तुम्हारे टाइम की जरूरत होती है, वो टाइम तुम इन चीजों को नहीं दे सकोगे, ठीक है। तो ये काम जो कि एक ईमान वाले को करने होते हैं ना, एक आम आजाद ईमान वाले को, ये काम इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अल्लाह ताला ने उसके लिए बाकायदा सर्विसेज का एक सिस्टम डेवलप कर दिया कि ये तुम्हारे पास फ्री मेड्स होंगी, फ्री हाउस बॉयज होंगे, कि ये तुम्हारे काम करेंगे और तुम अपना काम करो जो कि मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाया है, जो कि एक ईमान वाला मर्द और एक ईमान वाली औरत को करना चाहिए। तबलीग का काम, इल्म का काम, इबादत का काम, इबादतें भी नहीं हो सकती भाई इस तरीके से, आप सारा दिन जो है वो क्या कहते हैं, कोल्हू के बैल की तरह से लगे रहें, तो आप कैसे इबादत करेंगे, राइट। हर एक की एक लिमिट होती है, फिजिकल लिमिट होती है। हमारे यहाँ तो चूंकि हमने जिहाद को पहले छोड़ा, ठीक है ना, सबसे पहले तो जिहाद तक हुआ ना, तो ये कनीजों और गुलामों का सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद जब हम दुनिया की तरफ और बढ़े, तो अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, सारी की सारी तारीफात भी चेंज करनी शुरू कर दी, जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो तो हटा दी उसके ऊपर से, इबादत करना जिम्मेदारी थी, तबलीग दीन इल्म हासिल करना मुसलमान की जिम्मेदारी थी, वो तो हमने हटा दी मुसलमान के ऊपर से, ठीक है ना। तो जब जिम्मेदारियां हटा दी तो फिर अब कोई ना कोई जिम्मेदारी तो डालनी है, तो अब हमने क्या जिम्मेदारी डाली अपनी औरतों के ऊपर कि तुमने सास ससुर की भी खिदमत करनी है, तुमने जो है वो नंद बहू की भी खिदमत करनी है, तुमने अपने नंद और देवर की भी खिदमत करनी है, तुमने पूरा ससुराल चलाना है, राइट। तो ये जो जुल्म शुरू हुआ है, अभी आपको तो शायद मैंने वो बयान भेजा भी नहीं है, दूसरे ग्रुप में भेजा था, दीन एसेंशियल्स वाले में, मौलाना तारिक जमील साहब, राइट, क्लियरली फरमा रहे हैं खुले अल्फाज में कि ये जुल्म जो है ना, कि बहू ने पूरे ससुराल को चलाना है, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान कल्चर के अंदर ये जुल्म है। मदीना कल्चर में तो ये कहीं नहीं था ये कि बहू ने जो है वो सबको चलाना है, राइट। लेकिन हमारे यहाँ कैसा है कि वो हमारी कितनी जानने वाली हैं इस तरह से कि कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सास जो है ना वो उनके दुम में लगी रहती है हर वक्त, राइट। उनके पीछे लगी रहती है कि तुमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, राइट। उसी तरीके से ससुर साहब के भी अपने नखरे होते हैं, और तो और जो है वो जो घर के अंदर दूसरे लोग होते हैं उनके भी अपने अपने, और बहू जो होती है सबकी जिम्मेदार होती है। तो ये जुल्म है, और ये जुल्म जो है ना ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक सजा ही है हमारे हमारे मुआशरे के ऊपर, क्योंकि जो काम हमारे करने के थे ना वो हमने छोड़ दिए। जब वो काम छोड़ दिए ना तो फिर तो ये सजा होती है इस तरीके से कि इस तरह की फिर मामला बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने ना ये बांदियों के ऊपर से इस चीज को रिलैक्स कर दिया, किस लिए कि ईमान वाली औरतें असल काम करने के काबिल हो सके, असल काम करने के काबिल हो सके। आगे फरमाया कि दर हकीकत ये फर्क औबाश शरीफ लोगों ने खुद कर रखा था कि हराए पर दस अंदाजी की जो कि तो जुर्रत तो हिम्मत नहीं करते थे, मगर अमा यानी कनीजों को छेड़ते थे। ठीक है, अमतुन होता है ना, कनीज को अमतुन कहते हैं, और अमा जो है उसकी जमा हो गई। शरीयत इस्लाम ने उनके इख्तियार करदा इस फर्क से यह फायदा उठाया कि औरतों की अक्सरियत तो खुद उन्हीं के मुसल्लमा अमल के जरिए खुद ब खुद महफूज हो जाएगी, यानी अक्सरियत तो आजाद औरतों की थी तो वो पर्दे के जरिए से महफूज हो जाएगी, बाकी रहा कनीजों का मामला तो सो उनकी इस्मत की हिफाजत भी इस्लाम में ऐसे ही फर्ज और जरूरी है जैसे हराइत की, मगर उसके लिए कानूनी तशद्दुद इख्तियार के बगैर चारा नहीं। क्या मतलब, उनको भी पर्दे में बिठा दें, ये तो चारा है ना, पर्दे में बिठाना भी तो एक ऑप्शन था ना, कनीजों को पर्दे में बिठा दो, लेकिन चारा नहीं है। पर्दे में बिठाना वॉज नॉट एन ऑप्शन, क्यों, इसलिए कि अगर वो पर्दे में बैठ गई तो काम कौन करेगा है। तो अगली यानी काम करना इज सो इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक लेबर ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने अहकाम तब्दील कर दिए, अहकाम डिफरेंट कर दिए। ठीक है, तो अगली आयत में इसका कानून क्या बतला दिया गया कि जो लोग अपनी इस हरकत से बाज नहीं आएंगे उनको किसी तरह मुआफ नहीं किया जाएगा, बल्कि जहां मिलेंगे पकड़े जाएंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे। इससे इसने कनीजों की इस्मत को भी हराइर की तरह से महफूज कर दिया। ठीक है, पर्दे में कनीजों को फिर भी नहीं मिटाया, लेकिन कि भाई अगर करोगे तो फिर तुम्हें यानी ये सोर्ट ऑफ नॉट एग्जैक्टली लेकिन सोर्ट ऑफ ऐसा ही है जैसे कि अमेरिका का सिस्टम है, ठीक है ना, कि वो बाहर घूमती हैं, ठीक है ना, और लोगों के ऊपर पाबंदी क्या है कि जी आप किसी को छेड़े मत, ठीक है ना, बेलिबास बाहर घूमती हैं, लेकिन मर्दों के ऊपर क्या पाबंदी है कि आप उनको ना छेड़ें, ठीक है ना, क्यों, अगर छेड़ोगे तो फिर तुम्हें जो है वो पकड़ लिया जाएगा, पुलिस जो है वो तुम्हें पकड़ लेगी। तो ये उनका सिस्टम ऐसा है कि उनके सिस्टम के अंदर इतने लूप होल्स हैं, इतने लूप होल्स हैं कि इट्स अनवर्कएबल, क्योंकि उनके यहाँ मेजोरिटी क्या तकरीबन 100% औरतें जो है वो बेलिबास घूम रही होती हैं, ठीक है ना। अब 100% औरतों को छेड़ने के लिए आप 100% मर्दों को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो दीन इस्लाम में ये वाला सिस्टम तो नहीं था 100% वाला, वहां पर तो बहुत थोड़ी सी कनीजें होती थी, ठीक है, और यानी एक घर में अगर 5-6 औरतें होती हैं तो 5-6 औरतों के लिए 5-6 कनीजें नहीं होती थी। सऊदी अरब नहीं था वो कि हर बच्चे के लिए एक एक मेड है, राइट, हर औरत के लिए एक मेड है, बल्कि एक घर के लिए एक मेड होती थी। एक घर के अंदर 10 औरतें हैं तो एक मेड, ठीक है, तो 1:10 का रेशियो था ना, तो मेड्स की तादाद यानी इन कनीजों की तादाद बहुत थोड़ी थी, ठीक है। तो उनका सिस्टम जो था वो वर्कएबल सिस्टम था, ठीक है, लेकिन अमेरिका के अंदर वही कॉन्सेप्ट है कि जी वो नंगी भी घूमे और कोई देखे ही भी ना सही उनको, तो वो अनवर्कएबल सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इसकी फिर इस तरह से अल्लाह ताला ने इस्मत की हिफाजत फरमाई हराए। अच्छा, इससे वाजह हो गया कि अलामा इब्ने हजम ने वगैरह ने जो मस्कूरा शुबा से बचने के लिए आयत की तफसीर जमहूर उलमा से मुख्तलिफ करने की तावील की है इसकी कोई जरूरत नहीं, शुबा तो जब होता जबकि कनीजों की हिफाजत का इंतजाम ना किया गया होता। ठीक है, तो अब ये मेरे मुताले में नहीं है कि जी इन्होंने क्या यानी शुबहे से बचने के लिए क्या तावील इख्तियार करी है अल्लामा इब्ने हजम ने। अल्लामा इब्ने हजम के बारे में मशहूर है कि ये थोड़ा सा ना इन्होंने थोड़ा सा हट करके उलमाए हक से कुछ तावीलात करी हैं, जिसकी वजह से ना इनको जो है वो ऐसी मकबूलियत हासिल नहीं हुई है जैसे कि दूसरे उलमा को हासिल हुई है। बहरहाल अल्लाह भी तो जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। गालिबन इस इबारत से ऐसा लगता है कि कनीजों के साथ कुछ इम्तियाजी सलूक वगैरह का शुबा पैदा होता है इसके अंदर, लेकिन मुफ्ती शफी ने फरमाया कि नहीं, इस शुबे की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत की हिफाजत का भी इंतजाम किया है। अच्छा, जो शख्स मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो जाए उसकी सजा कत्ल है। आयत मस्कूरा में मुनाफिकीन की दो शरारतों का जिक्र करके इनसे बाज ना आने की सूरत में जिस सजा का जिक्र किया गया है कि मा मलऊनीन अइनमा सुकिफू उखिदू व कुतिलू तक्तीला, यानी ये लोग जहां रहेंगे लानत और फटकार उनके साथ होगी और जहां मिलेंगे गिरफ्तार किए जाएंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। अब ये वो आयत है जो कि दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है इस्लाम के खिलाफ। ठीक है कि जी ये जो दीन है ये तो कुफार के ऐसे खिलाफ है कि बस काफिर को पकड़ो और बांधो और मारो। ठीक है ना। अब ये दहशतगर्दी के जो प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, दहशतगर्द तो चंद लोग होते हैं, ठीक है, और अक्सर तो जो है वो झूठ भी बोल रहे होते हैं, असल में तो वो खुद भी काफिर ही होते हैं, ऊपर ऊपर से मुसलमान बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान भी शामिल होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो काफिर जो है फिर क्या करते हैं, नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस हो के इंडियंस हो या जो भी हो, वो कहते हैं जी तुम्हारे कुरान में तो लिखा है कि बस काफिर को मारना वाजिब हर हाल में। ठीक है ना, जैसे कि ये वाली आयत ही पेश करते हैं। तो अब इसका जवाब मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने आज से 50-60 साल पहले लिखा हुआ है, ये कोई अभी 9/11 के बाद तो नहीं ये जवाब लिखा उन्होंने। तो क्या है कि ये सजा आम कुफार की नहीं है, बेशुमार नुसूस कुरान और सुन्नत इस पर शाहिद हैं कि आम कुफार के लिए शरीयत इस्लाम में ये कानून नहीं है, बल्कि कानून ये है कि अव्वल तो उनको दावत इस्लाम दी जाए, उनके शुबहात दूर करने की कोशिश की जाए, इस पर भी अगर वो इस्लाम ना लाएं तो मुसलमानों के ताबे जमी बनकर रहने का हुक्म दिया जाए, अगर वो उसको कबूल कर लें तो उनकी जान व माल और आबरू की हिफाजत मुसलमानों पर मुसलमानों ही की तरफ फर्ज हो जाती है। तो ये किन काफिरों की बात हो रही है, जो कि आपके अपने मुल्क में रहते हो, ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और ईसाई और यहूदी वगैरह। ठीक है, हाँ, जो इसको भी कबूल ना करें और जंग ही पर आमादा हो जाएं तो उनके मुकाबले में तो जंग करने का हुक्म है। ठीक है ना, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम इसके खिलाफ जंग करेंगे, तो फिर तो आपको भी उनके साथ जंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पाकिस्तान में कोई उठ करके जो है वो हिंदू को मार दे, तो वो तो नहीं जायज है ना बिल्कुल भी। और दूसरे मुल्कों के रहने वाले मुसलमानों के साथ हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो मुल्की लेवल के ऊपर एक एग्रीमेंट होता है, और जब आप किसी मुल्क के अंदर जाते हैं तो आप एग्रीमेंट करके जाते हैं, तो उनको भी आप पता नहीं कर सकते। तो फिर इस आयत में किन काफिरों का जिक्र हो रहा है, तो कह रहे हैं कि इस आयत में उन लोगों को मुतलकन कैद व कत्ल की सजा सुनाई गई है। इसकी वजह ये है, यानी इन लोगों को जो कि अंदर रहते हैं आपके मुल्क के और बगावत खुल्लम खुल्ला बगावत कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह यह है कि ये मामला मुनाफिकीन का था जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, और जब कोई मुसलमान अहकाम इस्लाम की खुली मुखालिफत और इनकार करने लगे तो वो इस्तिलाह शरा में मुर्तद कहलाता है, इसके साथ शरीयत इस्लाम में कोई मुसालित नहीं है। ठीक है ना, मुर्तद की फिर सदा अपनी जगह पर वो कायम है, बजुज इसके कि वो तायब होकर फिर मुसलमान हो जाए, क्योंकि मुर्तद को भी आप ऐसे सजा नहीं दे सकते, ठीक है, कि वह पकड़े और मार दें उसको, नहीं, उसको भी आपको यानी बंद करना पड़ता है प्रिजन के अंदर, जेल में बंद करना पड़ता है, और उसके पास सामने इस्लाम पेश किया जाता है, और एक से ज्यादा मरतबा उसको मोहलत दी जा रही होती है कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ। ठीक है ना, फिर अगर वो तायब हो जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन अगर वो तायब ना हो तो फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर मुर्तद की सजा जारी होती है। ठीक है, तो बजुज इसके कि वो तायब होकर फिर मुसलमान हो जाए और अहकाम इस्लाम को कौलन और अमलन तस्लीम कर ले, वरना फिर उसको कत्ल किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े इरशादात और सहाबा कराम के इजमाई तआमुल से साबित है। ओके, लेकिन ये कहाँ पर होगा, ये सिर्फ इस्लामी हुकूमत में हो सकता है ना, मुसलमानों की हुकूमत में तो नहीं हो सकता, ये तो इस्लामी हुकूमत होना जरूरी है। ठीक है, वरना इस्लामी हुकूमत नहीं होगी तो ये भी नहीं होगा फिर, जैसे कि आजकल सारी दुनिया में। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसकी जमात के खिलाफ बइजमा बइजमाए सहाबा जंगो जिहाद और मुसैलमा का कत्ल इसकी काफी शहादत है। मुसैलमा कज़्ज़ाब के जो ये इर्तदाद था और उसके साथ पूरा कबीला बनू हनीफा ये भी मुर्तद हो गया था उसके साथ ही, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का इनकार कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, तो फिर सहाबा ने उनके साथ जिहाद किया था, इतना दूर से आए थे और फिर यहाँ पर लड़ाई हुई और वो पूरा का पूरा मुकाम भी आज महफूज है। आपको पता है आप लोगों को कि रियाज से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव पर ये मुकाम मौजूद है, ठीक है ना। और यहां पर कितने सहाबा की खबरें हैं, यहां पर कम से कम 1500 सहाबा की खबरें हैं, 1500। ये जो कब्रिस्तान है ना, जो आपके घर से 20 मिनट के फासले पर है, ये जन्नतुल बकी के बाद दुनिया में सबसे बड़ा सहाबा का कब्रिस्तान, सबसे बड़ा, 1500 सहाबा है, राइट। और आपने सुना होगा, देखा होगा कि कहीं अगर एक सहाबी की खबर मिल जाए तो लोग उस जगह पर कितना जो है वो हो, सहाबी की खबर है जी, सहाबी की खबर है, वहां पर जाकर के दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं कि इनके वसीले से जो है वो, राइट। और यहाँ पर कितने सहाबा हैं, 1500 सहाबा है, जिनमें से के तकरीबन 450 सहाबा जो थे वो हाफिज कुरान थे, उस जमाने में वही हाफिज कुरान थे। उन्हीं की शहादत जो हुई ना मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ लड़ाई में, तो उसके बाद ही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अगर इतने हुफाज कुरान शहीद होते रहे तो कुरान की हिफाजत नहीं हो सकेगी। तो इसके बाद फिर कुरान की तदवीन का सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो मुसैलमा कज़ाब और उसकी जमात के खिलाफ इजमाए सहाबा जंगो जिहाद और मुसैलमा का कत्ल, इसकी काफी शहादत है कि उन्होंने इसको नहीं छोड़ा बल्कि इसके साथ जिहाद किया। आखिर आयत में इसको अल्लाह ताला की कदीम सुन्नत व दस्तूर करार दिया गया है, जिससे मालूम हुआ कि अंबियाए साबिकीन की शराय में भी मुर्तद की सजा या मुर्तद की सजा कत्ल ही थी, यानी इर्तदाद करने वाले को मुर्तद कहते हैं, तो उसकी सजा कत्ल ही थी। मस्कूर सदर खुलासा तफसीर में इन सजाओं को आम कुफार के जाब्ते में लाने के लिए जो तौजीह की गई है, इस तकरीर से उसकी जरूरत नहीं रहती। यानी ये जो खुलासा तफसीर में हम पढ़ा था, आम कुफार के लिए ये जो लिखा था ना उन्होंने कि मतलब आयत के ये हो गया कि अगर ये लोग अलान मुखालिफ है मुखालिफत अहकाम और मुसलमानों के खिलाफ हरकतों के बाज आ गए, वो अपनी दर पर्दा मुनाफिकाना चालों में लगे रहें तो ये सजा जारी नहीं होगी, वरना फिर आम कुफार के हुक्म में दाखिल होकर सदावार सदा हो जाएंगे। और फसाद व शूरश पर जो सजा जारी करना कुछ इन्हीं के साथ मखसूस नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उन मुफसिद लोगों में भी अपना यही हाल। तो उनके जो अल्फाज थे वो उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था खुलासे तफसीर में कि आम कुफार को भी पकड़ करके मारना जायज़ है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो यहाँ पर तौजीहात करी है ना, तो उससे फरमा रहे हैं कि अब इससे जो है ना वो आम कुफार के जाब्ते में इस बात को जारी करना कि जी आम कुफार को भी पकड़ के मारना जायज है, तो इस तकरीर से फिर अब उस तौजीह की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई कि ये सिर्फ जो है ना ये बगावत करने वाले, खुले आम बगावत करने वाले, यानी जिनको कि मुर्तिद भी कहा जाता है, तो उनके लिए ये मामला है। तो चंद मसाइल क्या है कि इस आयत से ये साबित हुआ कि औरतों को जब किसी जरूरत की बिना पर घर से निकलना पड़े तो लंबी चादर से तमाम बदन छुपा कर निकलें और इस चादर को सर के ऊपर से लटका कर चेहरा भी छुपा कर चलें। मुरव्वजा बुरका भी उसके कायम मुकाम है, ठीक है। तो मुरव्वजा बुरका कम अज कम मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह के जमाने में मेरा ख्याल है कि वो बुरका था जो कि पठानों वाला बुरका होता है ना, जिसमें कि जाली होती है, ठीक है ना, वो जो जिसको कहे नाउजुल्ला हमारे तबके के लोग जो है वो शटल कॉक कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आंखों के सामने जाली थी, ठीक है। तो मुरव्वजा बुरका उस जमाने का वो था। अब काला वाला निकाब जो सऊदी अरब के अंदर ज्यादा राइज है, ठीक है, तो उसके अंदर जो दो आंख वाला मामला है वो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की औरतें जो है वो वाला करती थी कि नहीं करती थी, ये तो कोई और ही बता सकता है जिसने उसको देखा, लेकिन बताया ऐसे लगता है कि वो जो औरतें थी ना वो फिर सर के ऊपर से जो जैसा कि सऊदी अरब में कुछ औरतें इस तरह करती हैं कि ऊपर से एक पतली दुपट्टे टाइप की चीज डाल देती हैं, तो उनके यहाँ की औरतें गालिबन वैसा वाला करती होंगी, क्योंकि पठानों वाला बुरका जो है ये हिंदुस्तानियों में हमने राइज नहीं देखा। मुसलमानों में ऐसी अफवाहें फैलाना हराम है जिनसे उनको तश्वीश और परेशानी हो और नुकसान पहुंचे, ठीक है। ऐसी बातें अगर हम तक पहुंचे तो उनको उधर ही रोक देना चाहिए और अपने उलमा के सामने पेश कर देना चाहिए कि ये जो बातें मुझ तक पहुंची हैं तो इनकी क्या हकीकत है, क्या इनको किसी से कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, खुद नहीं फैलाना फैलाना चाहिए इस किस्म की किसी भी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास में रोकनी है, आगे की जो आयात हैं उनका तर्जुमा यानी आखिर तक, इस सूरत के आखिर तक वो अगली क्लास में कर लीजिएगा, यानी आयत नंबर 73 तक, ठीक है। तो फिर सूरह अज़ाब की इंशाल्लाह तशरीह करके तो हम कर लेंगे। कोई सवाल? जाना है, अगर कोई सवाल नहीं है तो।